ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह और आर्थिक विश्लेषक शुभमोय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की अपनी यात्रा के बाद नई दिल्ली वापस लौट आए हैं। उनकी यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण रही और बेहद सफल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में छठे क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लिया, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया, भारतीय मूल के लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री की इस यात्रा पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पैनल में हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर स्वर्ण सिंह आपका आकाशवाणी में।
नमस्कार हर्ष, और धन्यवाद अपने कार्यक्रम में जोड़ने के लिए।
धन्यवाद। और थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं इकोनॉमिक एनालिस्ट शुभमय भट्टाचार्य जी। हमारी संवाददाता हिमानी राणा भी अमरीका गई थी, सुनते हैं उनकी ये रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री ने अपने दौरे की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक से की। राष्ट्रपति बाइडेन ने इसे विशेष महत्व देते हुए इस बैठक की मेजबानी विल्मिंगटन डेलावेयर में अपने निवास पर की। बैठक के दौरान जिन दो समझौतों पर हस्ताक्षर हुए उनमें से है एक इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क अग्रीमेंट और दूसरा भारत अमेरिका ड्रग पॉलिसी फ्रेमवर्क। क्वाड नेताओं के सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि क्वाड स्वतंत्र, खुले, समावेशी और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि क्वाड समूह का महत्व परस्पर सहायता, साझेदारी और एक दूसरे के पूरक के रूप में बना रहेगा।
हमने मिलकर हेल्थ सिक्योरिटी, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट चेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में कई सकारात्मक और समावेशी इनिशिएटिव लिए हैं। हमारा मैसेज साफ है, क्वाड इज हियर टू स्टे, टू असिस्ट, टू पार्टनर एंड टू कॉम्प्लीमेंट।
क्वाड नेताओं ने हिंद महासागर में नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी और भारत की सराहना की। क्वाड एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए क्वाड नेताओं ने क्वाड विल्मिंगटन घोषणा को भी अपनाया। कैंसर मूनशॉट कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत GAVI वैक्सीन अलायंस और क्वाड पहल के तहत हिंद प्रशांत देशों के लिए 4 करोड़ वैक्सीन खुराक का योगदान देगा।
मुझे खुशी है कि इंडो पैसिफिक देशों के लिए गावी और क्वाड की पहलों के अंतर्गत भारत से 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज का योगदान दिया जाएगा। ये 40 मिलियन वैक्सीन डोसेज करोड़ों लोगों के जीवन में आशा की किरणें बनेगी।
शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी अल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। प्रधानमंत्री की यात्रा का एक अन्य आकर्षण अमेरिका द्वारा 297 पुरावशेषों की वापसी रहा, जो चोरी से या तस्करी से भारत से ले जाए गए थे। इन्हें शीघ्र ही स्वदेश लाया जाएगा। यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में नासा कलोजियम में भारतीय अमेरिकी समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम में भाग लिया। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों में प्रवासी भारतीयों की भूमिका की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि उनका कौशल और प्रतिभा बेजोड़ है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए PUSHP पुष्प मंत्र भी दिया।
आपको एक शब्द याद रहेगा, पुष्प, और मैं इस पुष्प को डिफाइन करता हूँ, पी फॉर प्रोग्रेसिव भारत, यू फॉर अनस्टॉपेबल भारत, एस फॉर स्पिरिचुअल भारत, एच फॉर ह्यूमैनिटी फर्स्ट को समर्पित भारत, पी फॉर प्रोस्परस भारत, यानी पुष्प।
बाद में प्रधानमंत्री ने MIT स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा आयोजित एक गोलमेज सम्मेलन में न्यूयॉर्क में तकनीकी उद्योग जगत की प्रमुख हस्तियों से बातचीत भी की। यह गोलमेज बैठक मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैव प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर तकनीक पर केंद्रित थी। प्रधानमंत्री ने भारत में आर्थिक परिवर्तन, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, सेमीकंडक्टर, बायोटेक और हरित विकास का उल्लेख किया तथा कंपनियों को इन क्षेत्रों में भारत में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया।
बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंट, इन तीनों चीजों को लेकर के मैंने बायो E3 पॉलिसी को बल दिया है। 2030 तक भारत की बायो इकोनॉमी बढ़कर $300 बिलियन की होने की संभावना देखते हैं। 2025 तक भारत में 10,000 से ज्यादा बायो स्टार्टअप्स की संभावना मैं देख रहा हूँ।
इसके बाद प्रधानमंत्री ने नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली, कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमद अल सबा और फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ अलग अलग द्विपक्षीय बातचीत की। यात्रा के तीसरे दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य का शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बाधा की बजाय एक सेतु की तरह होना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि मानवता की सफलता सामूहिक शक्ति में है, युद्ध के मैदान में नहीं।
ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी।
बहुपक्षीय संस्थानों में सुधारों के बारे में बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है क्योंकि सुधार ही इनकी प्रासंगिकता बनाए रखने की कुंजी है।
ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म इज द की टू रिलेवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरिटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए नए मैदान भी बन रहे हैं। इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन।
संयुक्त राष्ट्र महासभा से अलग प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए सभी तरह की मदद के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव और वियतनाम के राष्ट्रपति टो लाम, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और होली सी कार्डिनल के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पेत्रो पैरोलिन के साथ भी बैठकें की। इस तरह प्रधानमंत्री की अमेरिका की एक अत्यंत सफल यात्रा संपन्न हुई। न्यूयॉर्क से हिमानी राणा, आकाशवाणी समाचार।
शुरुआत आपसे करते हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के अगर महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम आपसे जानना चाहें तो आपका क्या कहना है?
मुझे लगता है एक तो जाहिर है कि भारत की बदलती हुई तस्वीर या छवि जो है वो पूरी यात्रा में नजर आई, पर यदि आप ये ढूंढना चाहें कि ध्यान किस पर केंद्रित था तो मुझे लगता है अति आधुनिक तकनीक को लेकर, जो अति आधुनिक उत्पादन की ओर भारत का पूरा रुझान बना है पिछले कुछ महीनों में, उस पर मुझे लगता लगातार ध्यान बना रहा। आपने देखा कि वो कम से कम करीब 72 घंटों की यात्रा में 6 बड़े पड़ाव आप उसमें देख सकते हैं। जैसे आपने खुद जिक्र किया कि सबसे पहले तो क्वाड का शिखर सम्मेलन हुआ और उसमें भारत की जो नेतृत्व है, दिशा निर्देशन है, वो दो वजह से बहुत खास हो जाता है। पहले तो ये कि दोनों जापान में और अमेरिका में नेतृत्व में बदलाव आने वाला है। वहां दोनों जगह चुनाव हो रहे हैं, एक जगह पार्टी में और दूसरी जगह पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें कंटिन्यूटी भारत किस तरह से प्रोवाइड करेगा और किस तरह से क्वाड को लगातार जो मोमेंटम बना हुआ है उसको बनाए रखेगा। और उससे बड़ा मुझे लगता है जो एक तरह से क्लिंचर या सफलता भारत की है, वो जो स्वैप हुआ लास्ट मिनट में कि भारत को शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी थी वो अमेरिका ने की और अगले साल अब भारत क्वाड की मेजबानी करेगा, जिसका साफ मतलब हो जाता है कि पहले 6 महीनों में ही अमेरिका के नए राष्ट्रपति, चाहे वो कमला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, वो भारत की यात्रा पर आएंगे। मुझे लगता है ये अपने आप में बहुत अच्छा अपना भारत के लिए होगा। और उसके बाद एक राउंड टेबल उन्होंने न्यूयॉर्क में किया सभी सीईओस के साथ, जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वहां फिर आप देखें कि वो अत्याधुनिक तकनीक पर बहुत ध्यान रहा, खासकर बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें बहुत जगह भारतीय मूल के जो लोग हैं वो उनका नेतृत्व करते हैं उन कंपनियों का, तो वहां भी किस तरह से तकनीक से विकास लाना है भारत में उस पर ध्यान रहा। जैसा आपने कहा कि वो हमेशा जहां भी जाते हैं भारतीय मूल के लोगों से, भारतीय नागरिकों से लगातार मिलते हैं, और वो यहाँ भी हुआ न्यूयॉर्क में। और ये अपने आप में मुझे लगता है एक नया एक्सपेरिमेंट है कि भारत के प्रधानमंत्री विश्व में जहां भी जाते हैं, कभी कभी तो बहुत बड़ी संख्या में भारतीय मूल के और भारतीय नागरिकों से मुलाकात करते हैं। इस तरह का इतिहास में पहले कभी मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कभी हुआ हो। फिर उसके अलावा जो ये जो भविष्य को लेकर शिखर सम्मेलन हुआ यूएन जनरल असेंबली का, उसमें भी भारत की आवाज और भारत का जो सोच है, दर्शन है, वो इसलिए भी प्रभावी और ज्यादा एक तरह से नजर में विश्व की आता है क्योंकि दोनों बड़े नेता जो ग्लोबल साउथ के आप मान सकते हैं, जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस शिखर सम्मेलन में नहीं आए, जिसका मतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री की जो सोच है वो पूरे ग्लोबल साउथ को या लीस्ट डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है एक तरह से। हालांकि और भी बहुत राष्ट्र अध्यक्षों ने इसमें शामिल हुए इसमें, तो कई तरीकों से आप देखें कि भारत की बदलती तस्वीर को और बदलती तस्वीर से भारत की क्या सोच है, किस तरह से भारत अपने विकास को विश्व विकास में जोड़कर देखता है, और उसके साथ साथ किस तरह से ये विकास में तकनीक का बहुत ही अहम योगदान रहने वाला है, ये मुझे लगता है इस यात्रा का पूरी तरह से इस पर ध्यान केंद्रित था। हाँ, कह सकते हैं कि एक तरह से चीन की ओर भी इशारा हुआ, एक तरह से अलग अलग परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। तो जिस तरह से दोस्ती भारत और अमेरिका की बढ़ रही है, खासकर सेमीकंडक्टर्स को लेकर, और आप देखें कि आने वाले सप्ताह में वहां के जो स्टेट डिपार्टमेंट के स्पेशल एनवॉय हैं क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को लेकर, जिनका आपने नाम सुना होगा डॉक्टर सेज सेंटर है, वो भारत आने वाले हैं, तो किस तरह से ये तकनीक का जो साझेदारी है उसको जल्द से जल्द आगे बढ़ाना है। भारत में सेमीकंडक्टर चिप्स का मैन्युफैक्चर होगा, वो सेना के लिए इस्तेमाल होंगे, अमेरिकी सेना के लिए भी इस्तेमाल होंगे और बहुत से नेटो एलाइज की सेना में भी इस्तेमाल होंगे। तो ये बहुत एक अलग तरह का, जो चाहे वो भारत अमेरिका के रिश्तों की बात करें या पूरे भारत की जो बदलती तस्वीर जब विश्व में जो हमारी एक तरह से साख नजर आती है, वो सब में मुझे लगता है ये यात्रा अपने आप में काफी सटीक
और बेहद सफल रही है। आपने बहुत ही बारीक नजर आप प्रोफेसर स्वर्ण सिंह रखते हैं विदेश नीति पर, कूट नीति पर। हमने ये देखा कि पिछले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो कूट नीति रही है, बल्कि कहें कि कूट नीति के जो सिद्धांत रहे हैं, इस यात्रा में हमने उन्हें और मजबूत होते हुए देखा। और यही वजह है कि जब हम ग्लोबल नेताओं के जेस्चर्स को देखें, चाहे वो अमरीकी राष्ट्रपति हों या बाकी के नेता हों, तो हमने देखा कि भारत को एक बड़ा सम्मान की से देखा जा रहा है, और ये रिस्पेक्ट प्रधानमंत्री मोदी के आव भगत के साथ ही कोई भी देख सकता है। तो आपको क्या लगता है कि किस हद तक मोदी की ये यात्रा उनकी कूटनीति को, सिद्धांत को और मजबूत कर रही है?
हर्ष, आपने ये बहुत अहम प्रश्न उठाया कि भारत आज विश्व की पांचवी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, और शायद 2030 से पहले ही, हालांकि कहा जा रहा है कि 2030 तक, मुझे लगता है उससे पहले ही तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बनेगा। उसके चलते चाहे भारतीय लोगों की उम्मीदें और अपेक्षाएं हो या फिर पूरे विश्व की अपेक्षा हो, भारत से बहुत अलग तरह से बदल जाती है। इसीलिए भारत को भी सामने लाना होता है कि वो किस तरह से पूरे विश्व से जुड़कर अपनी जो समृद्धि है, जो अपनी संतुलन, शांति और विकास है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाने की सोच रखता है, क्या रणनीति भारत की है। जाहिर है कि 8% वृद्धि दर होने की वजह से जो भी विदेशी निवेशक हैं, जो निवेश करना चाहते हैं भारत में, उनको लगता है कि भारत में आज शायद विश्व में सबसे ज्यादा पर डॉलर रिटर्न्स, जिसको हम कहते हैं, जिसको मुनाफा अपने निवेश से कमाने की जो उम्मीद है, वो बहुत ज्यादा है दूसरे देशों के इतने मुकाबले में। तो चाहे वो ठोस वजह आर्थिक मुनाफा कमाने की हो, या वो सामरिक साझेदारी बनाने की हो, या विश्व में किस तरह से जो ग्लोबल गवर्नेंस में बदलाव लाना है, किस तरह से बड़े निर्णय करने हैं, विश्व की चुनौतियों से कैसे सुलझाना है उनको, अलग अलग तरीकों से आज भारत का आकर्षण जो है वो विश्व में बढ़ता हुआ नजर आता है। उसमें आप इस बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें कि प्रधानमंत्री का जो खास तरीका है, जो उनकी हक डिप्लोमेसी हम कभी कभी कहते हैं, वो परस्पर व्यक्तिगत तौर पर जो रिश्ते बनाते हैं, आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि किस तरह से वो बॉडी लैंग्वेज नजर आती है प्रधानमंत्री की और अमेरिका के राष्ट्रपति की। आपको याद होगा कि वो जब G7 सम्मेलन में गए थे पिछले साल हिरोशिमा में, तो राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मैं आपका ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं, क्योंकि इतने लोग आपके उस कार्यक्रम में व्हाइट हाउस में शामिल होना चाह रहे हैं कि हम उतने लोगों को अकोमोडेट नहीं कर पा रहे। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उनको अपना बॉस कहा, एक भारतीय मूल के और भारतीय नागरिकों के बहुत बड़ी संख्या में एक सम्मेलन में जो मिलते हैं प्रधानमंत्री हमेशा। तो अलग अलग तरह से भारत तो आकर्षित हो ही रहा है, जाहिर है, पर प्रधानमंत्री का जो अपना व्यक्तिगत तरीका है भारत को विश्व स्तर पर पेश करने का, भारत क्या सोचता है, भारत क्या योगदान दे सकता है पूरे विश्व के स्तर पर, वो भी अपने आप में काफी एक तरह से सुदृढ़ और बहुत ही काबिल तरीका हो जाता है, जो भारत को तेजी से आगे बढ़ाने में मुझे लगता हमेशा से बहुत सहायक रहा है।
जी प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, अब हमारे साथ आर्थिक विशेषज्ञ शुभमाय भट्टाचार्य जी भी जुड़ गए हैं। शुभमाय, स्वागत आपका आकाशवाणी में।
नमस्कार।
नमस्कार। तो हम चर्चा कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पर, और आपसे इसके कुछ आर्थिक पहलू पर हम बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। दरअसल 3 दिन की यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने परमाणु ऊर्जा, सर्वाइकल कैंसर, वैक्सीन, सेमीकंडक्टर, AI, इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे सहित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर समझौते किए हैं। इस यात्रा के मद्देनजर और इन समझौतों के मद्देनजर इसका आर्थिक पहलू को कैसे आप देखते हैं और कितना ये सशक्त कर पाएगा आने वाले समय में तेजी के साथ, जब भारत को एक आर्थिक शक्ति बनना है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है?
देखिए, अभी भारत की जो आर्थिक पहल है वो काफी सुदूरप्रसारी बन गया है। पहले जमाने में अभी हम लोगों को कई बार समझ में नहीं आता है कि कुछ ही डिकेड्स पहले जब भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिका या दूसरे देशों का दौरा करते थे तो कुछ कुछ चीज मांगने के लिए, कुछ कुछ चीजों के बारे में, मैं सहायता शब्द ही इस्तेमाल करूंगा, उन पर काम करने के लिए वो विदेशों में जाते थे। आज वो चित्र पूरी तरह से बदल ही नहीं गया है, वो 180 डिग्री ट्रांसफर हो गया है। अभी जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूएस गए हैं, इसके पहले जब वो सिंगापुर से मिले तो, और इसके पहले जो बाकी राष्ट्र से मिलने की जो भी क्वाड मीटिंग से भी पहले शुरुआत में जून महीने में भी जो मुलाकातें हुई हैं
जी,
उसका या उसके पहले भी चलते हुए मैं मोदी 2.0 की भी बात करूंगा, इनमें अभी क्या हो गया है कि कुछ कुछ चीजें बहुत क्लियर है। वो क्या है कि भारत दुनिया का 5 टॉप इकोनॉमीज है। ये अगर हम समझे तो इसमें फिर समझ में आता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो चीजों की पहुंच है वो कई देश अपने तरीके से वो सोच भी नहीं सकते कि उनके अपने देश में इस तरह का विस्तार हो सकता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी कंपनियों के लिए अपना पोजीशन बनाना, ये एक जिसे कहते हैं, पहले हम यूज टू आस्क फॉर इट, हम चाहते थे कि कंपनियां यहाँ पे आए। अब भी कंपनियों के लिए ये एक जिसे कहते हैं एक एसेंशियल चीज है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उनको कितनी पहुंच मिल सकती है। ये जो बदलाव आ चुका है, इस वजह से भारतीय जब प्रधानमंत्री के हिसाब से नरेंद्र मोदी जी जब किसी शिखर वार्ता में बातचीत करते हैं दूसरे देशों के साथ, तो सबसे बड़ी चीज बन जाती है कि किस चीजों में इंडिया कैन गिव अ स्पेस, किन चीजों में हम उनको फ्री रेन दे सकते हैं। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी, जैसे मैं बता रहा था कि एक इतना, इट्स नाउ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी दुनिया में, और इस इकोनॉमी में पहल करने के लिए सारी कंपनी को ही उत्साह रहेगा। उस उत्साह को जगह देते हुए साथ में उनके साथ भारतीय जो जरूरतें हैं उनको बैलेंस करके रखना, एक जिसे कहते हैं मोस्ट सैटिस्फाइंग एक सिचुएशन है भारत के लिए। और यही चीजों का आगे चलते हुए देखेंगे कि किन किन चीजों में, किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन और इन सभी चीजों का एक समावेश बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो उसी का ही एक क्रम था ये इस बारी का, जैसे यूएस में प्रेसिडेंट बाइडेन के साथ उनका जो डिस्कशन था वो एक रूप, और इस तरह का आपको कहीं और अभी दिखेंगे। जी
जी। और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह के पास आते हैं, इस दौरे के क्रम में यूएन में समिट ऑफ द फ्यूचर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने वैश्विक संस्थाओं में सुधार का मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाया, हालांकि उन्होंने किसी संस्था का नाम नहीं लिया। तो आपको क्या लगता है ये कौन सी संस्थाओं की बात कर रहे हैं, और जो ये सुधार है किस तरीके की सुधार की आवश्यकता है वैश्विक संस्थाओं में?
ये समझना हर्ष जरूरी हो जाता है आपके श्रोताओं के लिए कि ये जो शिखर सम्मेलन भविष्य को लेकर हुआ, समिट ऑफ द फ्यूचर जिसको कहा गया यूएन जनरल असेंबली की आम सभा महासभा की, वो आम तरह की कोई बैठक नहीं थी, वो वंस इन ए जनरेशन जिसको कहते हैं, और उसकी पूरी तैयारी होती है। करीब एक साल से ज्यादा से उसकी तैयारी हो रही थी, करीब 4,000 से ज्यादा लोगों को विश्व भर में उसके लिए कंसल्ट किया कि क्या विषय उसमें एजेंडा पर आना चाहिए या किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और अभी भी करीब 10 दिन से चल रहे इस सम्मेलन में, जिसमें 3 आखिरी दिनों में राष्ट्राध्यक्षों ने उसको संबोधित किया, करीब 7,000 लोग उसमें शामिल हुए। तो इतने बड़े पटस्थल पर, इतने बड़ी बैठक में आप देखें कि भारत के प्रधानमंत्री का भाषण बहुत दूर तक एक तरह से भारत का संदेश लेकर जाता है। उसमें कई बातों का जिक्र हुआ, पर आपने क्योंकि पूछा कि किस तरह से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थान हैं, जो उतने निर्णय लेने के तरीके हैं, उसमें सुधार होने की जरूरत है, ये प्रधानमंत्री ने कहा। जाहिर है कि उसको समझने के लिए विदेश मंत्री का भाषण जो एशिया सोसाइटी में हुआ एक दिन बाद वॉशिंगटन में, वो उसकी तरफ इशारा करता है जहां उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में जो निर्णय लेने के तरीके हैं उसमें आज रीबैलेंसिंग की जरूरत है, क्योंकि जो संस्थान बनाए गए थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद वो शायद आज पूरी तरह से विश्व का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं और बहुत से नए देश उभर कर सामने आए, खासकर उन्होंने वहां एशिया सोसाइटी में एशिया का जिक्र भी किया। तो जाहिर है कि केवल ये संयुक्त राष्ट्र संघ या सुरक्षा परिषद तक सीमित नहीं है, अलग अलग संस्थानों में सुधार लाने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखें कि IMF जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, उसमें ब्रिक्स के देशों का आज दुनिया की GDP में करीब 35-36% भागीदारी है, पर IMF में उनकी केवल वोटिंग वेटेज का केवल 19% है। तो ये जो आपस में अलगाव है एक तरह से सच्चाई का और संस्थानों के तरीके का, उस पर मुझे लगता है पूरा ध्यान उसमें केंद्रित था और उस तरफ ध्यान दिलाने की कोशिश की प्रधानमंत्री ने। पर एक बात मैं और अक्सर हर्ष कहता हूं आजकल कि इन संस्थानों पर ज्यादा जिम्मेदारी आज हो जाती है बजाय के भारत पर जिम्मेदारी हो कि वो भारत को किस तरह से, या दूसरे जो एशिया के देश हैं, चीन भी उसमें शामिल है, उसको किस तरह से और भी ज्यादा अपनी आवाज सामने लाने का अवसर प्रदान करता है। तो जब हम बात करते हैं कि क्या भारत की क्रेडिबिलिटी पर कुछ प्रभाव पड़ता है कि भारत आज संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का 27 सदस्य नहीं है, मुझे लगता है भारत की क्रेडिबिलिटी पर इस पे आज कोई असर नहीं पड़ता। पूरा विश्व जिस तरह से जुड़ रहा है भारत के साथ, आज ये क्रेडिबिलिटी का इशू सुरक्षा परिषद पर है कि क्या वो विश्व को ठीक से प्रतिनिधित्व दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो सोच है कि आज विश्व के संस्थानों को सुधार लाने की ज्यादा जरूरत है बजाय कि भारत को उसमें अपना स्थान पाने की, ये जो आर्ग्यूमेंट हम कुछ लोग इसमें देते आ रहे हैं कुछ वर्षों से, मुझे लगता है कि वो ज्यादा सटीक है कि भारत का प्रभाव इन संस्थानों के बाहर रहते हुए भी उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है जितना बढ़ना चाहिए। इन संस्थानों का भला होगा यदि ये भारत को स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में देते हैं और दूसरे जितने संस्थान हैं निर्णय लेने के ग्लोबल गवर्नेंस में, और कई तरह के सुधारों की जरूरत है। जो विषय दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत अहम थे वो आज इतना अहम नहीं है। आज हम पर्यावरण की चिंता करते हैं, आज हम रिफ्यूजीज को लेकर चिंता करते हैं, आज आतंकवाद की चिंता बहुत बड़ी है। तो मुद्दे और जो उसके सदस्य होने चाहिए दोनों में बदलाव आया है, और इन सभी संस्थानों को यदि कामयाब होना है, इफेक्टिव होना है, तो आज जाहिर है कि उनको कई दूसरे मुद्दों पर ध्यान होगा और कई नए देशों को उसमें जोड़ना होगा।
बिल्कुल शुभ, में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह ने एक बहुत जरूरी महत्वपूर्ण बात यहाँ ये कही कि जिस की GDP में जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसके जो वोटिंग का महत्व है वो भी उतना ज्यादा होना चाहिए, जो अभी नहीं है। ग्लोबल संस्थाओं को ये देखना होगा। इस पर क्या टिप्पणी है आपकी?
ये बिल्कुल ही सही वक्त है। इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल जिसे मैं कहूंगा ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सबको एक रीफॉर्मिंग या रीऑर्गेनाइजिंग करना अपने प्लेटफॉर्म्स को। क्यों? क्योंकि अभी आपको याद होगा कुछ दिनों पहले लैरी समर्स और एनके सिंह ने वर्ल्ड बैंक और उसके चलते बाकी सारे ऑर्गेनाइजेशंस में मूलभूत सुधार की बात का एक ब्लूप्रिंट दिए थे, और ये ब्लूप्रिंट बहुत, जिसे मैं कहूंगा बहुत सिग्निफिकेंट ब्लूप्रिंट है, क्योंकि G20 के पटल पर इसको रखा गया, और इसीलिए रखा गया कि इन सारे चीजों को, इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस को अगर हम सही तरीके से चेंज की अगर बात सोचे तो ये एक फ्रेमवर्क बहुत ज्यादा, जिसे कहते हैं बेसिक रिफॉर्म्स की बात आ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप में सही नहीं रहे, लेकिन इनकी जो डेवलपमेंट्स हैं आज के जमाने में, इनको अभी भी, जिसे कहते हैं फॉर द 21st century, इनको चेंज करना पड़ेगा। और इनको चेंज करने के लिए इस तरह के बदलाव, जिसे कहते हैं गवर्नेंस रिफॉर्म्स, वो लाना बहुत जरूरी है। जी
जी, और साथ ही में प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जो दृष्टिकोण होना चाहिए ग्लोबल सारे देशों का, वो मानव केंद्रित दृष्टिकोण सबसे प्रथम होना चाहिए, तभी हम अपनी सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उन्हें भी पूरा कर पाएंगे, स्वास्थ्य को भी हम देख पाएंगे, और दुनिया में जितने लोग गरीब हैं उनको हम गरीबी रेखा से बाहर भी निकाल पाएंगे। बल्कि प्रधानमंत्री ने भारत का भी जिक्र किया और कहा कि 250 मिलियन लोगों को अभी उनकी सरकार ने गरीबी से बाहर निकालकर ये दिखा दिया है कि अगर कोई देश ये ठान ले तो वो जरूर कर सकता है।
बिल्कुल सही कहा। आज मुझे लगता है कि विश्व को सबसे बड़ी चिंता सतत विकास को लेकर भी है, क्योंकि जितने भी उसमें टारगेट्स रखे गए थे कि 2030 तक वहां पहुंचना है, उसमें ज्यादातर देश शायद नहीं पहुंच पा रहे उस तरह से, तो ये चिंता का विषय है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने यह कहा कि जब विश्व विकास की हम बात करते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से मानव कल्याण पर केंद्रित होना चाहिए। तो मानवता को जोड़कर जो सोच है, बजाय कि आपस में, उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी पूरी काबिलियत है वो हमें जोड़कर उसको इस्तेमाल करना है, ना कि उसको युद्ध में या बैटल फील्ड में उसको इस्तेमाल करना है। तो ये जो बात है कि भारत किस तरह से अपना विकास विश्व के विकास से जोड़कर देखता रहा है, उसमें पूरा हमारा जो दर्शन है, जो हमारा दृष्टिकोण है, वो सामने आता है कि हमने शुरू से ही वासुदेव कुटुंबकम की बात की है कि पूरा विश्व से भारत जुड़ा हुआ है और पूरा विश्व भी भारत से उसी तरह से जुड़ा हुआ है। और उसके अलावा जो खास बात है हर्ष, वो ये कि भारत जब कोई अपनी सोच सामने रखता है विश्व के पटस्थल पर, तो उससे पहले एक अपने यहाँ उदाहरण भी पेश कर देता है। जैसे आपने कहा कि स्वस्थ कर बात करता है, उसमें स्पेसिफिक क्वाड में कैंसर को लेकर जैसे एक इनिशिएटिव हुआ है, और उसके अलावा सर्वव्यापी महामारी के चलते चाहे वो पैरासिटामोल हो या वो फिर बाद में वैक्सीन हो, पूरे विश्व में हमने पहुंचाए हैं। तो ये इसी के चलते भारत को आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और एक सस्ती दवाइयों को सबको मुहैया कराने की जो सोच है वो सामने पेश की है भारत ने। तो जब ये उदाहरण पेश करने के बाद भारत विश्व स्तर पर, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, संतुलन की बात हो, तकनीक की बात हो, आतंक की बात हो, रिफॉर्मेशन की बदलाव और सुधार लाने की बात हो, तो उस बात में मुझे लगता है कि जो प्रभाव उस बात का है वो बढ़ जाता है। और इसीलिए आज पूरे विश्व में भारत जुड़ना चाहता है अलग अलग तरह से। इसीलिए विदेश नीति का जो पूरा ध्यान है वो हमारे यहाँ से नॉन अलाइनमेंट से आज मल्टी अलाइनमेंट पर हो गया है। जितने देशों में, जितने क्षेत्रों में भारत भागीदारी साझेदारी बना सकता है, बना रहा है, और उसी में ये यात्रा जो है, ये सब पहलू इस यात्रा में साफ नजर आते हैं
जी। और शुभ, मैं एक त्वरित टिप्पणी आपसे चाहता हूँ कि इस समय देखिए भारत का जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है वो $150 बिलियन से अधिक का है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि अगले 6-7 वर्षों में 2030 तक ये $500 बिलियन तक का हो जाना चाहिए, और इस दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इसके तहत सेमीकंडक्टर और एआई से हमें कितना सपोर्ट मिलने वाला है, खास करके जो समझौते हुए हैं हाल के दिनों में?
मैं बता रहा हूँ कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पहले बहुत सारे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के कंपनी आने में कतराते थे, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था इतना विकसित हो चुका है और पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि उस सेक्टर में अभी इन सारी कंपनीज को जरूरत पड़ गया है कि भारत में ही अपना डेवलपमेंट सेंटर बनाए। तो सेमीकंडक्टर्स, जैसे आप देखेंगे और भी सारे जो क्रिटिकल चीजें, रोबोटिक्स, इन सभी सेक्टर्स में जो कंपनियां ने नया चीजें लेकर आने, एक नया सेक्टर जिसमें बहुत ज्यादा काम हो रहा है वो है बायोटेक्नोलॉजी। इन सभी सेक्टर्स में कंपनियां इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि इंडियन मार्केट उनके लिए बहुत फायदे का चीज है, और इसीलिए वो इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं। कोई भी टारगेट से ज्यादा मैं समझता हूँ जो स्केल है, जो ग्रोथ का जो क्रम चल रहा है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है
जी।
और अगर आप उसमें देखें कि कौन से कंपनीज इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कौन से कंपनीज अपने आप को इसमें शामिल रखना चाहते हैं, तो वो देखकर पता चलता है कि इंडियन इकोनॉमी में कितना इंटरेस्ट उन सारी कंपनीज को दिख रहा है। तो दैट इज फंडामेंटली वेरी वेरी सिग्निफिकेंट, और ये चीज को ही भारतीय अर्थव्यवस्था का, जिसे कहते हैं गोल्डन स्ट्रीक या जिसे कहते हैं ऑपर्चुन मोमेंट, ऐसे बहुत सारे एडजेक्टिव जो दिया जाता है वो इसीलिए दिया जा रहा है जी।
हमने आज चर्चा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा पर, जो बेहद सफल रही है, और पूरे दुनिया में इस सफल यात्रा की चर्चा हो रही है। हमारे साथ जुड़े थे प्रोफेसर स्वर्ण सिंह और शुभमय भट्टाचार्य जी। आप दोनों का आकाशवाणी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा के महत्वपूर्ण पहलुओं पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर स्वर्ण सिंह और आर्थिक विश्लेषक शुभमय भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289904044।